بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ناظرین، آج ایران میں 14 شعبان حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی شب ولادت با سعادت ہے، اس مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir، اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ایرانی تیل پر پابندیوں کا نفاذ اور اس کے اثرات، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ہاں ناظرین، یورپی یونین نے امریکہ کی اطاعت کرتے ہوئے 1 جولائی سے ایرانی تیل پر پابندیوں کا نفاذ کر دیا۔ ایرانی تیل پر پابندیوں کا نفاذ ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ پابندیوں کے نفاذ سے صرف 1 دن قبل امریکہ نے چین اور سنگاپور کو بھی ان پابندیوں سے مستثنی قرار دے دیا۔ چین نے پہلے ہی صاف اور واضح لفظوں میں اعلان کر دیا تھا کہ وہ امریکہ کے خودسرانہ پابندیوں کو کوئی اہمیت نہیں دے گا اور ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھے گا۔ امریکہ اس سے پہلے ہندوستان، جاپان اور یورپ کے متعدد ممالک کو اس پابندی سے مستثنی کر چکا ہے۔ اگرچہ ایران کے وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ ان پابندیوں سے ایرانی تیل کی فروخت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ ایرانی تیل کے اپنے مخصوص خریدار ہیں جو پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ ایران سے تیل کی درآمد جاری رکھیں گے، لیکن اس کے باوجود ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپ نے اس اقدام سے توانائی کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور تیل کے عالمی منڈیوں کا توازن بگڑ جانے کے اسباب فراہم کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور یورپ کو اس غیر قانونی اقدام کے سیاسی نتائج کے ساتھ ہی مالیاتی اور اقتصادی بحران میں شدت اور نتیجتاً عوام کے احتجاجی مظاہروں میں وسعت کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ ایرانی تیل پر پابندیوں کا نفاذ ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ ایران اور گروپ 5+1 کے مذاکرات میں باہمی اعتماد سازی پر زور دیا گیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں برصغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر علی جعفر زیدی صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ زیدی صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
زیدی صاحب، 1 جولائی سے ایرانی تیل پر پابندیوں کا نفاذ کر دیا گیا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟
جی، ان پابندیوں کے نتائج تو یورپ اور امریکہ اور اس کے جو حواری ہیں ان پر زیادہ شدید ہوں گے بنسبت ایران کے، کیونکہ ایران نے ان پابندیوں کے حفظ ما تقدم کے طور پر
جی
150 بلین ڈالرز اپنا فورن ریزرو رکھ لیا تھا، اور دوسرا یہ جو پابندیاں ہیں اس کے نتیجے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایران کی جو ایکسپورٹ ہے یورپ میں وہ 6 لاکھ بیرل یومیہ ہے، جو کہ ایران کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا 1/4 ہے
جی،
باقی 3/4 جو ہے وہ ایشیا کے ممالک میں یہ تیل جاتا ہے، اور اس میں جو بڑے خریدار ہیں وہ چین، بھارت، جنوبی کوریا اور جاپان ہے۔ چنانچہ ایران پر تو شاید اس کے اثرات یقیناً کچھ تو ہوں گے، لیکن ایران نے اس کی تیاری حسب معمول، ایران ایک بڑی طاقت ہے، سمجھدار قوم ہے، تو انہوں نے اس کی تیاری پہلے سے کر لی ہوئی تھی، اور 150 بلین ڈالرز کا فورن ریزرو انہوں نے اپنے ہاں رکھا تھا۔ اب اس کا دوسرا پہلو جو یورپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ یورپ کے عوام इसराइल के अवाम और अमेरिका के अवाम को ये तासुर देने के लिए यहाँ तीनों ममालिक के जो मीडिया के गुरु हैं उन्होंने इसको इतना उठाया है ताकि यहाँ के अवाम को ये तासुर दिया जा सके, यकीन दिलाया जा सके कि ईरान एटमी ताकत बनने जा रहा है, एटमी हथियार बना रहा है और उसको रोकने के लिए हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हालांकि यहाँ का जो इंटेलेक्ट है या यहाँ के वो लोग जो ओपिनियन फॉर्म करते हैं उनके नॉलेज में है कि जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज यानी पांचों एजेंसीज के जो सरबराह है जेम्स क्लैपर, तो जेम्स क्लैपर ने सेनेट में ये बयान दिया था कि ईरान टेक्निकली इस पोजीशन में है कि एक दो साल में वो एटमी हथियार बना ले, लेकिन ईरान ने एटमी हथियार नहीं बनाया। अब ये सेनेट, अमेरिकन सेनेट के सामने जेम्स क्लैपर का ये बयान मौजूद है। तो ये अमरीकी वहाँ के जो ओपिनियन फॉर्म करने वाले तबके, पॉलिसी बनाने वाले, उन्हें मालूम है कि ईरान कोई एटमी हथियार नहीं बना रहा, लेकिन अवाम को ये तासुर देने के लिए कि हम ईरान में इसलिए दिलचस्पी रखते हैं कि आपको ईरान के हमलों से बचा सकें। हालांकि असल मकसद आपको, हम सबको और तीसरी दुनिया के बिलखसूस अवाम को मालूम है कि ईरान के जो ज़खायर हैं उस पर कब्ज़ा अमरीकी साम्राज्य का हदफ है और ईरान चूंकि एक ताकत के तौर पर मशरक़ वस्ता में इमर्ज कर चुका है और उसके असरात नहायत तेज़ी से पिछले दो एक सालों में फैले हैं, तो वो और भी ज़्यादा एक ख़तरे की बात है अमरीकी साम्राज्य के लिए। चुनाचे ये अपने अवाम को अपनी होम कंजम्पशन के लिए इन्होंने इसको मीडिया के थ्रू बहुत उछाला हुआ है
जी जी।
वरना हकीकत यह है कि जो तेल के ईरान के खरीदार हैं वो और हैं, और चूंकि उन्होंने चीन और भारत ने, जैसे आपने फरमाया, उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम अमेरिका की हर बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, उसका हुक्म मानने को तैयार नहीं है। चुनाचे अमरीका ने 20 ममालिक पर ये पाबंदी नहीं रखी
जी।
और उसके साथ जो जो सेंट्रल बैंक, जो बैंक्स हैं दुनिया के
जी जी।
उन पे भी जो पाबंदी लगाई है कि जो ट्रांजैक्शन है ईरान के तेल का उसकी ट्रांजैक्शन ना की जाए, तो उसमें भी इन 20 ममालिक को की पाबंदी उन ट्रांजैक्शंस पर नहीं है। चुनाचे ईरान पर तो शायद इसके असरात कम होंगे
जी जी।
यूरोप में, यूरोप के अवाम में इसके असरात होंगे, और जैसा कि ईरान की फॉरेन ऑफिस ने कहा है, यकीनन ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ के अवाम पर जब माशी बोझ बढ़ेगा तो फिर वो अमेरिका और बरतानिया की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ उठ खड़े होंगे। तो बजाय इसके कि अमेरिका को या उसके इत्तेहादियों को इसका फायदा हो, इन द लॉन्ग रन इसका नुकसान होगा उन्हें
जी। बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब। और नाज़रीन, हमारे दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं हिंदुस्तान के सीनियर तजिया निगार जफर आगा साहब। जफर आगा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जफर आगा साहब, ईरानी तेल पर पाबंदियों का निफाज 1 जुलाई से कर दिया गया है, इसके आलमी असरात क्या मरतब होंगे?
जी आपको मेरी आवाज आ रही?
जी बिल्कुल आ रही है। ईरानी तेल पर पाबंदियों के आलमी असरात क्या होंगे?
सबसे पहली बात तो ये कि
जी जफर आगा साहब से राबता मुनकता हो गया है। जी जैदी साहब, यूरोप जो इस वक्त खुद शदीद तरीन माली और इक्तसादी बहरान से दो चार है, उसने अमरीका का ये दबाव क्यों कबूल किया है कि अमरीका के एजेंडे पर अमल करते हुए उसने पाबंदियों का नफाज किया है?
दरअसल अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ मसलन इराक की पॉलिसी को फ्रांस और जर्मनी के सरबराहों ने उस वक्त जंग मुसल्लत करने की पॉलिसी को नहीं माना, तो वहाँ पर जो हुकूमत के सरबराहों की चेंज है वो मिडल ईस्ट में ही नहीं बल्कि यूरोप में भी अमेरिका ऐसे हालात पैदा करता है कि अपने मर्जी के हुक्मरान यहाँ पर आ जाएं। बरतानिया में भी इसी तरह से हुआ है। तो ये तमाम अलाइज जो इस वक्त अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं, अमेरिका के इत्तेहादी नहीं हैं बल्कि मैं समझता हूँ कि ये ममालिक अब अमेरिका की कॉलोनी बन चुके हैं। ये सिक्योरिटी काउंसिल अमेरिका के लिए काम करती है, नेटो की अफवाज अमेरिका की अफवाज हैं। तो इस सूरत में यूरोप के इन ममालिक के लिए और कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि अमेरिका की इस हुक्म को तस्लीम करें। दूसरा ये कि इनको ये भी मालूम है कि ईरान की सप्लाई इनके यहाँ बहुत ज़्यादा तो है नहीं, और इनकी मईशियत पर अगर असर पड़ेगा तो बरतानिया की मईशियत पर ज़्यादा असर पड़ेगा। बाकी ममालिक तो शायद इतना ज़्यादा तेल इम्पोर्ट नहीं करते ईरान से, चुनाचे और बरतानिया अमेरिका का बिल्कुल एकदम दुम छल्ला बन चुका है। और मुझे अफसोस है यहाँ के जो वाहिद सुपीरियर इंटेलेक्ट जो इस वक्त यानी लिविंग लेजेंड हैं टोनी बेन, उन्होंने रिसेंटली अपने एक बयान में कहा कि अफसोस की बात यह है कि जब वो पैदा हुए थे तो दुनिया पर बरतानवी एम्पायर थी और आज वो एम्पायर अमेरिका की कॉलोनी बन चुका है। चुनाचे इस सूरत हाल में अमेरिका के जो हवारी हैं इनको अमेरिका की पॉलिसीज़ के साथ जाना है। लेकिन जो मुस्बत बात है वो ये है अवामी नुक्ता निगाह से कि अवाम इन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं। जूं जूं अमेरिका का दबाव और जुल्म दुनिया पर बढ़ रहा है तूं अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के ख़िलाफ़ लोग हो रहे हैं। यहाँ का फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिस्टम दोनों नाकाम हो चुके हैं, इनके पास ऐसे टूल्स नहीं हैं कि इस इकोनॉमिक सिस्टम को या फाइनेंशियल सिस्टम को रिपेयर कर सकें। चुनाचे ऐसी सूरत में पिछले चंद सालों में आपने देखा होगा कि जो मुजाहरे हैं, हाँ वो इसके 99 हम हैं और 1% आप हैं की तरह के हों या जंगों के खिलाफ हों, रोज़ बरोज़ उसमें अवाम की शमूलियत में इजाफा हुआ है। पहले लोग अगर सैकड़ों में थे तो अब हज़ारों में हैं और लाखों तक में जा रहे हैं। तो चुनाव ये अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है इसके खिलाफ अवाम में यूरोप में भी अमेरिका में भी और वो हवारी जो अमेरिका के हैं चाहे वो तीसरी दुनिया में हैं उन में शदीद नफ़रत और गम गुस्सा है अमेरिका की जंग ये जो जंगी जनून की पॉलिसी है और दुनिया के जितने भी ज़खायर हैं उन पर कब्ज़ा करने की जो फॉरेन पॉलिसी है, ये अवाम इसके शदीद खिलाफ हैं। मगर हुक्मरान जैसे सऊदी अरब के हुक्मरान उसके साथ हैं या कुछ शेख उसके साथ हैं, इसी तरह यूरोप के अंदर की हुकूमतें भी उसके साथ हैं। लेकिन तब्दीली आ रही है, अभी आपने फ्रांस में देखा सोवियत यूनियन टूटकर जब रूस बना और रूस को इन्होंने बिल्कुल कशकोल उसके हाथ में आ गया था, तो पुतिन ने फिर रूस को एक बार एक ताकत के तौर पे खड़ा किया है और पुतिन की वजह से दुनिया में उस तरह से वो जो यलगार अमेरिका करता था जहाँ चाहता था चढ़ दौड़ता था अब वो नहीं हो सक रहा। मिडल ईस्ट की हुकूमतों को तब्दील करने के रास्ते में अब रूस एक रुकावट है और यही वजह है कि शाम पर अमेरिका नेटो के ज़रिए वो मकासद हासिल नहीं कर सका, हमला नहीं कर सका, चूँकि रूस ने और चीन ने इसकी मुखालफत की हुई है। तो दुनिया के हालात बदलते जा रहे हैं, अवाम अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं यूरोप में भी और दुनिया भर में भी, और अमेरिका बजाय खुद उसकी मईशियत तो नाकाम हो चुकी, खुद वो एक जवाल पजीर ताकत है, जवाल पजीर साम्राज्य एक हद तक तो ऊपर जाता है, लेकिन दुनिया में तारीखों में हमने देखा कि फिर वो जब नीचे आता है तो उसको संभालने वाला कुछ नहीं होता और ये सल्तनतें फिर टूट जाती हैं।
जी,
तो अमेरिका एक जवाल पजीर साम्राज्य ताकत है। उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, बिलखसूस सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के जो हुक्मरान हैं, उनको कम अज कम ये सबक सीखने की जरूरत है कि जब अमेरिका गिरेगा या उसकी पॉलिसीज इस कदर शदीद नफरत का शिकार हो चुकी हैं तो वो नफरत उनकी तरफ भी जाएगी। और हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में जूं जूं अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, तूं तूं उसके जो हाशिया बरदार हैं उनके खिलाफ अवाम का रद्देमल बढ़ता जा रहा है, और उसके साथ साथ ईरान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। ईरान का जो इस्लामी इनकलाब जो हज़रत इमाम खुमैनी ने बरपा किया, उसके असरात बहुत शिद्दत से फैलते चले जा रहे हैं। तो जूं जूं अमेरिका बदनाम हो रहा है, जूं जूं अमेरिका के खिलाफ शदीद रद्देमल हो रहा है, तू तू ईरान की मकबूलियत मशरक़ वस्ता में बढ़ती जा रही है। तो ये जो अरब हुक्मरान चंद रह गए हैं, इनको अपनी बका के लिए भी अपनी फॉरेन पॉलिसीज को तब्दील करने की ज़रूरत है। और यूरोप में तो बहरहाल तब्दीली के हवा चल पड़ी है, फ्रांस में तब्दीली आ गई है, वो हुकूमत नहीं है जो कि अमरीका की बिल्कुल उस तरह से अहकाम को माने, और इटली में भी ये प्रोसेस होने जा रहा है, स्पेन में आप देखेंगे चंद अगले आने वाले महीनों में और सालों में यूरोप बहुत तेजी से तब्दील होगा, उसकी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की सबसर्वियंट हमेशा नहीं रह सकती।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है सियासी उमूर के माहिर अहमद रोशन फिक्र साहब को, जो अभी कुछ देर पहले स्टूडियो पहुंचे हैं। रोशन फिक्र साहब, स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। ईरानी तेल पर पाबंदी का निफाज 1 जुलाई से कर दिया गया है, ईरान पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हज़रत इमाम ज़माना अजल्लाहु फ़रजहु शरीफ के यौम विलादत की मुनासबत से तमाम नाज़रीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक पाबंदियों का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इनका ज़्यादातर असर जो है वो नफ्सियाती लिहाज से होगा, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा असर ईरान की इक्तसादी तरक्की पर नहीं पड़ेगा, और हमने जो कोशिश की है उससे इन पाबंदियों के असरात कम से कम हो गए हैं, और हम लेकिन जब वो हम पर पाबंदियां लगाते हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं कि हम इन पाबंदियों का मुकाबला करें और इन पाबंदियों को नाकाम बनाने की कोशिश करें। मजमूई तौर पर अब तक की ये पाबंदियां हमारे लिए तकरीबन अंदरून मुल्क बहुत सारी कामयाबियों की सूरत में सामने आए। ईरान तेल की सनतों के बहुत सारे मामलात में खुद कफील हो गया है। हमारा जो ऑयल इंडस्ट्री है, हम उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देने पर कामयाब हो गए हैं, और ये पाबंदियां हम जानते हैं कि हम पहले से इन पाबंदियों को देखते चले आ रहे हैं, और हमें मालूम है कि इन पाबंदियों का किस तरह से मुकाबला किया जाएगा। अगरचे फ्रांस और बरतानिया वगैरह ने जो पाबंदियां हम पर लगाई हैं वो अहमियत ईरान की अहमियत से वाकिफ हैं, और यह ईरान पर तेल की पाबंदियों के आलमी असरात मुरतब हुए हैं, और G8 के ममालिक यही वजह है कि इन्होंने G8 ममालिक को इस बात का मशवरा दिया था कि वो अपने जो रिजर्वियर हैं ऑयल के उनको इस्तेमाल करें ईरान के पाबंदियों की सूरत में। और उन और यही वजह है कि 5+1 ग्रुप के साथ होने वाले मॉस्को में मुज़ाकरात में ओबामा ने ये बात जोर देकर कही कि ईरान की तेल की पाबंदियों से मुस्तस्ना नहीं हो सकते। हम ये समझते हैं कि ये बहाली एतमाद के खिलाफ है जो इन्होंने पाबंदियां लगाई हैं, जो इन जहाँ तक उनको खुद को मालूम है कि इन पाबंदियों को सिर्फ ईरान पर असर नहीं पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया की मईशत जो है वो इससे बुरी तरह से मुतासिर होगी। और ये पाबंदियां ईरान पर जो है वो मुसल्लत की गई हैं और अमरीका समेत दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो इस बात को महसूस करें कि ईरान की तेल पर पाबंदियों के नतीजे में जो असरात मुरतब होंगे उसमें ईरान जो है उसका कोई कसूर नहीं है बल्कि अमरीका इस बात में कसूर अमरीका है। और कौमों को इस बात की तरफ सोचना चाहिए कि उन्होंने अमरीका ने क्यों ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं और ये पाबंदियां कितनी गैर मुनसिफाना है और इसका असर जो है वो ज्यादातर खुद अमरीका और यूरोप की अकवाम पर पड़ेगा। लिहाजा हम ये समझते कि और हमने जो है वो पाबंदियों के नतीजे में तेल की सनत के हवाले से 6 मामलात में जो है वो खुद कफालत हासिल कर लिए। सिर्फ एक मंडी का मसला है जिसमें मंडियों पर पाबंदियां लगाई गई हैं और हम समझते हैं कि ईरान जो है वो तेल की मंडियां जो है उसका मुतबादल तलाश कर लेगा और जो ममालिक ईरान के तेल पर पाबंदियां लगा रहे हैं हम उसके मुतबादल ममालिक जो है वो तलाश कर लेंगे। मैं ये समझता हूं कि तकरीबन अगर हम ये देखें तेल की पाबंदियों का नफ्सियाती असर जो है उसके माशी नजरियात से
ज्यादा। और दिल्ली स्टूडियो जहाँ जफर आगा साहब मौजूद हैं, जफर आगा साहब, ईरान पर 1 जुलाई से पाबंदियों का नफाज किया गया, ईरान ने इससे पहले से ही इसकी तैयारी कर ली थी और रोशन फिक्र साहब की गुफ्तगु आपने मुलाहिजा फरमाई कि इसके जो असरात ईरान पर पड़ सकते थे उसको कमतरीन सतह तक ईरान ने पहुंचा दिया है और इसके आलमी असरात और खुद पाबंदियां लगाने वालों पर इसके असरात क्या होंगे।
देखिए आपने जो सवाल किया है उसके दो पहलू हैं
जी।
एक तो हमको ये समझना चाहिए कि जो तेल से मुताल्लिक जितने फैसले होते हैं वो बहुत सोच समझ कर फैसले होते हैं। आप वाकिफ होंगे कि बुश के दौर से अब इराक के ऊपर जो हमला हुआ उस वक्त से अब तक तकरीबन आलमी साम्राज्य की ये स्ट्रैटेजी रही है कि वो तेल के कोई ना कोई एक ऐसे ही हरकत करता है कि जिससे आलमी मंडी में तेल के दाम बढ़ें और उससे वो ज़बरदस्त मुनाफा कमाते हैं। चुनांचे जो ईरान के ऑयल सैंक्शंस की स्ट्रैटेजी है उसका एक हिस्सा जाहिर सी बात यह है कि वो ईरान को माशी तौर के ऊपर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं लेकिन उसके साथ साथ उसका एक हिस्सा वो ऑयल लॉबी भी है जो सारी दुनिया में तरह तरह से खास तौर से वॉर सिचुएशन क्रिएट करके तेल की कीमतें बढ़ाती है और उससे ज़बरदस्त मुनाफा हासिल करती है। तो ये तो ऑयल लॉबी का गेम है और आप जानते हैं कि ऑयल लॉबी दुनिया की किस कदर कितनी पावरफुल लॉबी है और साम्राज्य ताकतों का वो कितना बड़ा हिस्सा है और यहाँ तक के इराक पर होने वाली जंग में उसका एक बहुत ही नुमाया रोल था और जंग का एक मकसद भी था। बुश ये चाहते थे कि ऑयल लॉबी इससे मुस्तफीद हो और वो हुई। ये तो रही उनकी अपनी स्ट्रैटेजी जो माशी तौर के ऊपर साम्राज्य की अपनी एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन जाहिर सी बात यह है कि आप जब कोई कदम उठाते हैं तो वो आज की दुनिया में वो एक ये मुमकिन नहीं कि उससे अगर एक लॉबी को फायदा हो रहा है तो दुनिया के तमाम लोगों को भी उससे फायदा हो। इससे इराक की जंग के बाद जो बात सामने उभर कर आई, इससे सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ इस पॉलिसी से, ऑयल लॉबी और ऑयल कार्टल को तो दुनिया में बहुत फायदा हुआ, उन्होंने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बनाए जंग की साइकोसिस क्रिएट करके। लेकिन खुद अमेरिका की माशियात का आप जानते हैं 2008 में क्या हश्र हुआ। अमेरिका ऐसे माशी बहरान में फंसा कि तब से आज तक वहां पर क्राइसिस है। फिर आप यूरोप की तरफ निगाह डालें, यूरोप के तकरीबन आधे दर्जन मुल्क ऐसे हैं जो माशी तौर के ऊपर कंगाली की कगार पर है, कंगाल हो चुके हैं, जबरदस्त बहरान है मगरबी दुनिया में। वो अमेरिका और यूरोप दोनों जगह के ऊपर आप देख रहे हैं कि जबरदस्त बेरोजगारी का एक सैलाब सा चल रहा है। माशियात का आलम यह है कि एक पूरे पूरे मुल्क कंगाल हो जाते हैं और जर्मनी कभी उनको बेल आउट कर रहा है तो कभी फ्रांस से पैसा मांगा जाता है और कभी यूरो से पैसा मांगकर किसी तरह से इन ममालिक की माशियात को चलाया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में ये सोचना कि मगरिब ने जो यूरोप ने जो फैसला लिया है कि अब वो पहली जुलाई से जो ईरान के ऑयल के ऊपर सैंक्शन लगाएगा उससे सिर्फ ईरान को नुकसान पहुंचे, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की माशियत पर यकीन कुछ ना कुछ असरअंदाज होंगी ईरानी माशियत। लेकिन जैसा आप फरमा रहे थे कि ईरानी हुकूमत ने उस नुकसान से निपटने के तरीके तलाश कर लिए हैं और अभी जो एक्सपर्ट आपके यहाँ स्टूडियो में कह रहे थे कि अब हम उनके सामने सिर्फ एक मसला ये रह गया है कि मंडी का मसला है, उस मंडी के मसले को भी हल करने की कोशिशें और वो नया बाजार तलाश करने में लगे हुए हैं और वो इसमें भी कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल अगर ईरान को नुकसान होता भी है तो ये मानना और ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि वो यूरोप जो खुद एक माशी बहरान में से इस वक्त गुजर रहा है, जहां बेरोजगारी का सैलाब है, जहां पूरे पूरे मुल्क माशी तौर के ऊपर कंगाली की कगार पर खड़े हुए हैं, वो यूरोप इससे मुस्तफीज, इससे उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तेल के दाम सारी दुनिया में बढ़ने जा रहे हैं, ये तय बात है कि जहां और इसी के लिए ये हरकत होती है कि आप एक सिचुएशन क्रिएट कीजिए, ऑयल कार्टल्स को उसका फायदा हो, वो ट्रिलियंस और बिलियंस की डॉलर में अपना मुनाफा कमाएं और उसका नुकसान आवाम को सारे आलमी सतह के ऊपर उसका तेल एक ऐसी चीज़ है जिसके दाम में अगर एक डॉलर की कभी फ़र्क आता है तो सारी दुनिया में हर किस्म की अशिया के दाम बढ़ जाते हैं, तो उसका बोझ दुनिया के आवाम पर पड़ेगा, वो मगरबी दुनिया के आवाम हों, एशियाई आवाम हों या किसी और खत्ते के आवाम हों। ये मुमकिन हो सकता है, मुमकिन है कि ऑयल लॉबी से इससे फ़ायदा हो। ईरान अब उस सतह पर पहुंच गया है कि जहां उसने इससे निमटने के रास्ते तलाश काफ़ी हद तक तलाश कर लिए, परेशानी है लेकिन इससे निमटने के रास्ते ईरान तलाश कर रहा है। इसका असर जैसा मैंने कहा सारी दुनिया की माशियत के ऊपर होने जा रहा है। दूसरी अहम बात, खुद यूरोप और खुद अमेरिका, ये दोनों जगह के अवाम भी इस फैसले से मुतासर होने जा रहे हैं, उन पर भी सख्त बोझ पड़ेगा और इस बोझ के बढ़ने के बाने कि जिन ममालिक में जो मुआशी बहरान है उसमें और शिद्दत होगी तो जाहिर सी बात है कि पोलिटिकल अनरेस्ट बढ़ेगा। सड़कों के ऊपर आप पहले ही से देख रहे हैं कि जलसे जुलूस यूरोप में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फिर इसका एक नतीजा ये हो रहा है जो वहाँ की सियासत में देखने को मिल रहा है कि जो फ्रांस में अभी चुनाव के बाद हुआ और दूसरे यूरोपियन ममालिक में भी जिसके असरात दिखाई देते हैं कि यूरोप में वो जो सियासत अभी कुछ पहले तक चल रही थी, जो प्योर राइटिस सियासत थी जिसमें आंख बंद कर ऐसी हुकूमतें कायम हो रही थी जो आंख बंद कर अमेरिका का की हलीफ थी, उसके बजाय लेफ्ट ऑफ सेंटर पॉलिटिक्स अब यूरोप में दोबारा से जो 80s के दौर था, 70s का दौर था, उस किस्म की सियासत अब यूरोप में जन्म ले रही है। और जैसा फ्रांस में एक लेफ्ट ऑफ सेंटर गवर्नमेंट आई और दूसरी जगहों के भी पर भी इसी किस्म का रुझान है, तो इससे यूरोप अमेरिका के की शिकंजे में जिस तरह से आया हुआ है, लॉन्ग टर्म में मैं समझता हूं कि उससे वो अमेरिका और यूरोप के दरमियान फासले बढ़ेंगे और इसका नुकसान जाहिर सी बात यह है कि अमेरिका को होगा। तो मैं ये समझता हूं कि आलमी सतह के ऊपर सबसे पहले तो तेल की कीमतें बढ़ने के जो इम्कान वसी हुए हैं उससे सारी दुनिया के आवाम पर बोझ पड़ने जा रहा है और उसका असर यूरोप हो, एशिया हो, अमेरिका हो, चारों तरफ होगा और इसका नुकसान सिर्फ ईरान को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को भुगतना पड़ेगा।
जी,
ये मुमकिन है जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया कि ऑयल लॉबी को और ऑयल कार्टल्स को इससे फ़ायदा पहुंच सकता है और पहुंचेगा, लेकिन दुनिया का अमन, इंसानों की जिंदगी, इंसानों पर माशी बोझ, ये दोनों बातें जो हैं वो खतरे में और ज्यादा बढ़।
बहुत बहुत शुक्रिया।
से मैं कहूँगा ये फैसला कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ ऑयल कार्टल और ऑयल लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए इस किस्म के फैसले हो रहे हैं जो अब सियासी तौर के ऊपर खुद अमेरिका और यूरोप के लिए नुकसानदेह साबित होने लगे।
शुक्रिया।
जैसा कि आपने देखा कि जिसके असरात इराक की जंग का असर अमेरिका की माशियात पर इतना खराब पड़ा कि आज तक अमेरिकन माशियात संभल नहीं सकी, यूरोप की माशियत की हालत जो है वो सब पर आया है। इसलिए अब आलमी साम्राज्य जो है वो खुद अपने दाम में गिरफ्तार होती चली जा रही है। उसके हथकंडे वही पुराने हथकंडे हैं जो 20वीं सदी और 21वीं सदी के शुरू में थे, लेकिन वो हथकंडे अब उसके लिए खुद बोझ साबित हो रहे हैं और उसके लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। ऐसे ही यूरोप ने जो फैसला किया है ईरान के तेल के ऊपर पाबंदी आयद करने का, उससे महज ईरान नहीं बल्कि खुद यूरोप को सख्त नुकसान पहुंचने के इम्कान मुझे वसी नजर आ रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जफर आगा साहब। रोशन फिक्र साहब, दो बातें एक साथ हुई। आप देखिए, 1 जुलाई से ईरान पर तेल की पाबंदी का निफाज किया गया। इससे पहले चंद दिन के अंदर आलमी मंडियों में तेल की कीमत एक बैग तकरीबन $30 तक गिर जाती है। इन दोनों बातों में रब क्या हो सकता है?
ببینید ماه دیگه
ہم جانتے ہیں کہ ایران پر پابندیوں کے نتیجے میں ایران تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیریوڈیکل جو ہے طور پر تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ جہاں تک پابندیوں کا تعلق ہے جو ایران پر لگائی گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یک طرفہ ہیں، اور کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالمی ادارہ ہے جو سلامتی کونسل کے نام سے ہے، وہ جو ہے وہ، اور دوسرا جو ہے وہ خود امریکہ ہے۔ بہرحال جو عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ روایتی طور پر ایسا ہوتا رہتا ہے، اور بعض دفعہ کیونکہ سردیوں کے لیے تیل کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ بہرحال جہاں تک انرجی کے ذخائر کے استعمال کا تعلق ہے جو ریزرو ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں جو حالیہ طوفان وغیرہ آئے ہیں ان کے نتیجے میں جو ہے وہ امریکہ کے اندر شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں خود ایران کے امریکہ کے اندر کی جو تیل کی کمپنی ہے ان کے اندر ایک تیل کی صنعت کے حوالے سے جو ہے وہ خاصا خوف پایا جاتا ہے ان طوفانوں کے، خاص طور پر میکسیکو کے اندر جو تیل کے ذخائر ہیں ان کی وجہ سے ان کو جو تیل طوفان کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے اس کے نتیجے میں۔ بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری جانب اسرائیل نے جو مشرق وسطی میں پالیسیاں اپنا رکھی ہیں اس کے نتیجے میں جو ہے وہ تیل کی قیمتوں پر بھی اس کا خاصا اثر پڑا ہے۔ اور مسلمہ طور پر یہ جو اشتعال انگیزیاں ہیں اس کا اثر جو ہے وہ خود یورپی عوام پر پڑے گا تیل کی قیمتوں میں اضافے کا, اور وہاں پر بھی جو ہے وہ تیل کی طلب میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا, اور ایک طرح کا یورپی عوام میں تیل کے حوالے سے اور انرجی کے حوالے سے خاص طور پر خوف پایا جاتا ہے, اور عوام کی جو صدائے احتجاج ہے وہ اب خود یورپی حکمرانوں تک پہنچ گئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خود اسرائیل کے اندر جو ہے وہ مظاہرے ہوئے ہیں, اور لوگوں کے لوگ جو ہیں وہ اقتصادی بدحالی کے خلاف انہوں نے مظاہرے کیے ہیں.
تقریباً در ایک سیاستی کہ الان پنج به علاوه یکی کہ
بہرحال
مثلا استنبول دو,
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کا نتیجہ بھی بہت مثبت رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو استنبول میں دوسرا اجلاس ہو رہا ہے جس میں ایران میں ایران کے جوہری مذاکرات کے نتیجے میں ایران جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, اور لیکن اس کے باوجود امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگائی ہیں اور اس کے نتیجے میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا.
اس کے ساتھ ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر علی جعفر زیدی اور ظفر آغا صاحب کے. بہرحال ایران پر تیل کی پابندیوں کے جو اثرات ہیں یہ عالمی سطح پر خود پابندیاں لگانے والوں پر اس کے اثرات زیادہ مرتب ہوں گے اور جو ابھی سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ.